लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको प्रभु ईश्वर का आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जन कल्याण तथा मानव केंद्रित समाज के निर्माण में योगदान प्रदान करे। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। श्रोताओं, पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल के प्राचीन व्यवस्थान के स्तोत्र ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं। स्तोत्र ग्रंथ 150 भजनों का संग्रह है। इन भजनों में विभिन्न ऐतिहासिक और धार्मिक विषयों को प्रस्तुत किया गया है। कुछ भजन प्राचीन इसराइलियों के इतिहास का वर्णन करते हैं तो कुछ में ईश कीर्तन सृष्टिकर्ता ईश्वर के प्रति धन्यवाद ज्ञापन और पापों के लिए क्षमा की याचना के गीत निहित हैं। कुछ भजन ऐसे भी हैं जिनमें प्रभु की कृपा, उनके अनुग्रह और अनुकंपा की याचना की गई है। इन भजनों में मानव की दीनता और दयनीय दशा का स्मरण कर करुणावान ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि वे कठिनाइयों को सहन करने का साहस दें और सभी बाधाओं एवं अड़चनों को जीवन से दूर रखें। न तो पूर्व से, न पश्चिम से और न मरुभूमि से उद्धार संभव है। ईश्वर ही न्याय करता है। वह एक को नीचा दिखाता और दूसरे को ऊंचा उठाता है। श्रोताओं, ये थे स्तोत्र ग्रंथ के 75वें भजन के 7वें और 8वें पदों में निहित शब्द। विगत सप्ताह पवित्र धर्मग्रंथ बाइबल एक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत हमने इन पदों की विस्तृत व्याख्या की थी। वस्तुतः 75वें भजन में ईश्वर को सृष्टिकर्ता और संसार का एकमात्र न्यायकर्ता घोषित किया गया है। यह भजन ईश्वर के अपूर्व कार्यों का बखान करता है। ईश्वर के अपूर्व कार्यों को देख लेने के बाद भजनकार उनमें अपने इस विश्वास की अभिव्यक्ति करता है कि ईश्वर ही मनुष्य को कष्टों और संकटों से बचाने वाले हैं। उद्धारकर्ता केवल प्रभु ईश्वर हैं और प्रभु ही निर्धारित समय आने पर भक्त का उद्धार करते हैं। इस भजन में मनुष्य को चेतावनी भी दी गई है कि वह अपने आप पर घमंड कदापि न करे, क्योंकि ईश्वर की कृपा और उनके अनुकंपा के बिना वह कुछ भी कर सकने में समर्थ नहीं हो सकता है। 75वें भजन के 8वें पद में निहित ऊंचा उठाना शब्द से तात्पर्य राजा के कृत्य से है, जिस पर यह शाही फैसला निर्भर रहा करता है कि किसे मार डाला जाना और किसे ऊपर उठाया जाना था। ऐसा ही है ईश्वरीय न्याय। न्यायकर्ता प्रभु ईश्वर ही जानते हैं किसे नीचा दिखाना है और किसे ऊपर उठाना अथवा किसे क्षमा प्रदान कर नवीकृत करना है। अस्तु मनुष्य सदैव उन्हीं से प्रार्थना करे और उन्हीं के प्रति धन्यवाद अर्पित किया करे। आगे 75वें भजन के 9वें पद में भजनकार कहता है, तिक्त उफंती मदिरा से भरा प्रभु के हाथ में एक प्याला है, वह उसमें से उंडेलता है, पृथ्वी के सब दुष्ट जनों को उसे तलछट तक पीना है। श्रोताओं, इस तथ्य की ओर हमने आपका ध्यान आकर्षित कराया था कि यह भजन 74वें भजन में वर्णित कोलाहल का प्रतिनिधित्व करता है। भजनकार कहता है कि यदि मनुष्य मरुभूमि पर चिंतन करेगा तो अवश्य ही उसका साक्षात्कार मानवीय अस्तित्व के भयावह पक्ष से होगा। यहाँ हम श्रोताओं को बता दें कि मरुभूमि जंगली जानवरों और सांपों, राक्षसों और जिन्नों का उजाड़ प्रदेश था, और जब जब उस युग के लोग मरुभूमि से गुजरने के लिए बाध्य होते थे, तब तब उनके मन में यही भय समाया रहता था कि वे उसे आगे निकलकर अपने मुकाम पर पहुंच पाएंगे या नहीं। इसीलिए भजनकार कहता है कि मरुभूमि से उद्धार केवल ईश्वर से प्रार्थना कर ही संभव हो सकता है। इस स्थल पर हमने आपको यह भी स्मरण दिलाया था कि संत योहन बपतिस्ता और स्वयं प्रभु येसु ख्रीस्त ने भी इसी प्रकार की मरुभूमि अथवा उजाड़ प्रदेशों में रहकर मनन चिंतन किया था तथा शैतान के प्रलोभनों को पराजित किया था। इस भजन के अंतिम पदों में भजनकार ईश्वर की स्तुति करता है तथा स्तुति करने का कारण बताता है। वह एक विश्वासी, धर्मपरायण और सत्यनिष्ठ व्यक्ति है जिसने ईश्वरीय क्षमा का सुखद अनुभव पाया है। वह एक नवीकृत, ताजगी से भरा और आनंदमय व्यक्ति है, और इसी के फलस्वरूप वह साहसपूर्वक कहता है, मैं सदा इसकी घोषणा करता रहूंगा, मैं याकूब के ईश्वर की स्तुति करूंगा, मैं सब दुष्टों का सिर झुकाऊंगा किंतु धर्मी का सिर ऊंचा उठाया जाएगा।
हे धर्म प्राण जन सुन लो, हे धर्म प्राण जन सुन लो, प्रभु में आनंद मनाओ, प्रभु में आनंद मनाओ, है मर्म कर्म का संतों परमेश्वर के गुण गाओ, परमेश्वर के गुण गाओ, हे धर्म प्राण जन सुन लो।
और अब आइए स्तोत्र ग्रंथ के 76वें भजन पर दृष्टिपात करें। इस भजन में प्रतापी ईश्वर की वंदना की गई है। इसके प्रथम 4 पद इस प्रकार हैं। ईश्वर ने अपने को यूदा में प्रकट किया, उसका नाम इज़राइल में महान है, सालेम में उसका शिविर है और सियों में उसका निवास। उसने वहां धनुष के बाणों को, शस्त्रों को, ढाल और तलवार को खंड खंड कर दिया। पवित्र नगर की रक्षा के लिए यूदा में प्रभु ईश्वर की आराधना की जाती थी, इसीलिए भजनकार कहता है ईश्वर ने अपने को यूदा में प्रकट किया। बाइबल आचार्यों का मानना है कि स्तोत्र ग्रंथ का 76वां भजन नबी ईसाया के युग में लगभग वर्ष 701 ईसा पूर्व उस समय रचा गया था जब ईश्वर की दया से यूदा अस्सुर राजा सन्हेरीब को पराजित कर पाया था। लॉर्ड बायरन ने अपनी एक रचना में इसका जिक्र किया है। इसमें कवि अपने शब्दों को कुछ इस प्रकार अभिव्यक्त करते हैं, अस्सीरियाई राजा प्रभु की चरागाह पर भेड़ियों की तरह टूट पड़ा था, उसके प्यादों ने बैंगनी और स्वर्ण वर्ण के परिधान धारण कर रखे थे और उनकी तलवारें गलीलियाई सागर में झिलमिलाते पानी में दिखने वाले तारों के सदृश चमक रही थीं, किंतु ईश्वर की एक झलक पड़ने पर उनकी तलवारों की चमक जाती रही थी। श्रोताओ, यूदा में जो कुछ हुआ वह मनुष्य का कार्य न होकर प्रभु ईश्वर का प्रताप था। इसकी कहानी हम राजाओं के दूसरे ग्रंथ में पढ़ सकते हैं। इस ग्रंथ के 19वें अध्याय के 20वें और 21वें पदों में लिखा है, उस समय आमोस के पुत्र ईसाया ने हिजकिया के पास यह कहला भेजा, प्रभु इज़राइल का ईश्वर यह कहता है, मैंने अस्सुर के राजा सन्हेरीब के विषय में तुम्हारी प्रार्थना सुनी है। सन्हेरीब के विरुद्ध प्रभु का कहना इस प्रकार है, सियों की कुंवारी पुत्री तुम्हारा तिरस्कार और उपहास करती है, यरूशलेम की पुत्री तुम्हारे पीठ पीछे सिर हिलाती है, तुमने किसकी निंदा और किसका अपमान किया है, तुमने किसके विरुद्ध आवाज उठाई है, तुमने किसकी ओर अहंकार की आंखें उठाई हैं, इज़राइल के परम पावन ईश्वर के विरुद्ध। फिर इसी अध्याय के 30 से लेकर 34 तक के पदों में ईसाया के श्रीमुख से हम इन शब्दों को सुनते हैं। असुर के राजा के विषय में प्रभु यह कहता है, वह इस नगर में प्रवेश नहीं करेगा, वह इस पर एक बाण भी नहीं छोड़ेगा, वह ढाल लेकर उसके पास नहीं फटकेगा और उसकी मोर्चाबंदी नहीं करेगा, वह जिस रास्ते से आया है उसी रास्ते से लौट जाएगा, वह इस नगर में प्रवेश नहीं करेगा। यह प्रभु की वाणी है। मैं अपने नाम और अपने सेवक दाऊद के कारण यह नगर बचाकर सुरक्षित रखूंगा।
रचनाए तेरी तुझको बखाने,
कल कल करती तोरी नदियां यूं कहती,
तू है